नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा, जो डॉक्टर प्रणव पंड्या ने लिखी है, उसके एक अध्याय पर बात करेंगे।
जी, ये पुस्तक वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा के जीवन पर है, गायत्री परिवार की संस्थापिका।
हाँ, और हम आज जिस अध्याय को देख रहे हैं वो है ध्यान की गहनता में दिखाई दिया अतीत। ये उनके किशोर जीवन की कुछ अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में है।
बिल्कुल, ये वो समय था जब उनके बचपन की जो शिव पूजा थी ना, वो किशोरावस्था में और गहरी होती चली गई।
अच्छा।
और उनके मन में फिर कई तरह के सवाल उठने लगे, एक आध्यात्मिक खोज सी शुरू हो गई।
हाँ, जैसे पुस्तक में बताया है, शुरुआत होती है ध्यान में दिखने वाले एक तेजस्वी महायोगी से।
जी,
उनके मन में ये बात आई कि भाई ये कौन है, कहीं ये भगवान शिव ही तो नहीं आ गए, मतलब अवतार लेकर। और इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए उन्होंने तय किया कि अपनी ध्यान साधना को और गहरा करना है और तीव्र करना है।
और यहाँ एक रोचक बात है, जैसे ही उन्होंने ये तय किया ना, उनकी बाहरी दिनचर्या वो थोड़ी अस्त व्यस्त सी हो गई।
अच्छा, कैसे?
मतलब खाने पीने का होश नहीं, नहाने का ध्यान नहीं, ऐसा लगने लगा जैसे वो कहीं और ही है। पर ये सब बाहरी तौर पर था, अंदर वो गहन साधना में उतर रही थी।
और परिवार वाले?
वो ये बदलाव समझ नहीं पा रहे थे।
और उन्होंने ऐसा बिल्कुल गुप्त रखा है ना?
जी हाँ, बिल्कुल गोपनीय। उन्होंने बाद में बताया भी कि साधना जितनी छुपी हुई हो उतनी प्रभावशाली होती है।
सही बात है, मतलब बाहर से देखो तो एक सामान्य लड़की, पर अंदर एक असाधारण यात्रा चल रही थी।
बिल्कुल, और ये अवस्था इतनी बढ़ गई कि उन्हें सोते जागते हर समय बस ध्यान का ही अनुभव होता था।
हर समय?
हाँ, पुस्तक में ऐसा ही लिखा है। कभी कभी तो अपने शरीर का, देह का भी होश नहीं रहता था।
अरे बाप रे, ये तो कमाल है।
और इसी दौरान उन्हें वो ब्रह्मांडीय ध्वनियां भी सुनाई देने लगी।
हाँ, वो नाद वाली बात, जैसे कभी भेरी कभी मृदंग।
जी, कभी वीणा कभी शंख की ध्वनि, जिसे अव्यक्त नाद कहते हैं, अनहद नाद।
कल्पना करना भी मुश्किल है कि ये कैसा अनुभव रहा होगा।
जी, और इसी गहन ध्यान में उन्हें फिर अपने पिछले जन्मों की झलकियां भी मिली।
अच्छा, वो रामकृष्ण परमहंस वाली बात?
हाँ, उन्होंने एक दृश्य देखा दक्षिणेश्वर का, श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ, और भक्त उन्हें माँ कहकर प्रणाम कर रहे हैं,
यानी माँ शारदा के रूप में।
जी, इशारा उसी तरफ है। फिर एक और दृश्य देखा बनारस का,
संत कबीर के साथ।
हाँ, संत कबीर के साथ, जैसे वो उनके जीवन से जुड़ी हो लोई के रूप में।
ये देखना कि कैसे अलग अलग युगों के इतने बड़े संत उनकी चेतना में आ रहे हैं, ये तो अद्भुत है।
और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, उन्हें ये बोध हुआ, ये ज्ञान हुआ
कि कबीर, रामकृष्ण और वो महायोगी जो ध्यान में दिखते थे,
वो एक ही चेतना है।
बिल्कुल,
तीनों एक ही हैं।
और साथ ही ये भी कि उनकी अपनी आत्मा।
हाँ, कि उनकी आत्मा ही पहले लोई बनी फिर शारदा बनी,
और इस जीवन में भी उसी महायोगी से उनका जुड़ाव तय है।
जी, इस बोध ने जैसे उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए, जीवन का रास्ता साफ हो गया।
और इसके बाद, इतने सालों की तीव्र साधना के बाद,
हाँ, जब ये ज्ञान मिल गया तब धीरे धीरे उनकी बाहरी दिनचर्या फिर से सामान्य होने लगी, व्यवस्थित हो गई।
तो परिवार वालों ने क्या देखा? बस यही कि वो सुबह जल्दी उठकर पूजा ध्यान करती हैं।
शायद हाँ, बस इतना ही कि नियमित रूप से शिव पूजा और ध्यान करने लगी हैं, पर उनके अंदर जो क्रांति हुई थी, जो ज्ञान मिला था,
और अपने आराध्य से मिलने की जो एक तीव्र इच्छा थी,
वो सब दुनिया की नजरों से छिपा रहा।
तो इस अध्याय से हमें वंदनीय माताजी के किशोर जीवन की एक बिल्कुल अलग तस्वीर मिलती है।
जी, एक गहन गोपनीय आध्यात्मिक यात्रा की झलक, जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ, अपने जीवन का उद्देश्य पता चला,
और शायद यही उनके आगे के महान जीवन की नींव बनी।
बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना।
किस बारे में?
कि कैसे एक व्यक्ति के अंदर चलने वाली इतनी गहरी अनुभूतियाँ, जो बाहर से दिखती भी नहीं,
हाँ,
वो उसके पूरे जीवन को, उसकी नियति को, और दुनिया के साथ उसके रिश्ते को कैसे आकार दे सकती हैं।
सही बात है, जीवन कितने शुरुआती दौर में मिला आत्मज्ञान।
हाँ, वो कैसे किसी को इतने बड़े लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित कर देता है, ये एक विचार करने लायक प्रश्न है।